पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से लेकर 11 पद। और स्मुर्ना की कलीसिया की दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसिन टीवी दर्शकों, पिछले सत्र में स्मुर्ना की कलीसिया को जो वचन दिए गए थे, हमने उत्तरी कोरिया के मिशन को देखा जो इस कलीसिया को अंत के दिनों में सौंपा गया है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह की पीड़ा और सताओं आ सकता है जब हम उस मिशन को पूरा कर रहे होंगे, और वो कैसे समाप्त होगा। जब समय आ पहुंचेगा हम उत्तरी कोरिया में प्रवेश करेंगे और सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों से प्रकट करेंगे, मगर जल्दी ही द्वार बंद हो जाएगा और मिशन कठिनाइयों से गुजरेगा। मैंने कहा था कि उत्तरी कोरिया फिर से अपने द्वार बंद कर देगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह उनकी व्यवस्था पर एक खतरा है, और मिशन में सताव और पीड़ाएं आएंगी, और कुछों को तो यहां तक कि कैद खाने में डाला जाएगा। उत्तरी कोरिया की सरकार और भी सचेत हो जाएगी जब सुसमाचार और भी तेजी से परमेश्वर के सामर्थ्य से फैलने लगेगा, इसलिए वे जल्द से जल्द अपनी कार्यवाही के लिए तर्कसंगत तरकीबें ढूंढेंगे और कैदियों को मार डालेंगे। मैंने आपको कहा था कि 10 दिन का समय वो समय की अवधि है जो शहादत के समय तक होगी। 10 दिन ना केवल उन कलेश और पीड़ाओं को दर्शाती है जो उत्तरी कोरिया में होंगे, मगर तमाम प्रकार के कलेशों को वो दर्शाती है जो प्रभु के समय से लेकर अब तक हुए हैं। और जब कोई शहादत तक विश्वास योग्य रहेगा तो किस तरह की आशीषें वो प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट वो मुकुट है जो उन्हें दिया जाएगा जो चौथे विश्वास के स्तर पर पहुंचते हैं, वे पवित्र लोग जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जो शहीद होंगे वे केवल तीसरे स्वर्ग के राज्य तक ही जा पाएंगे। यदि वे विश्वास योग्य रहे हैं परमेश्वर के तमाम घराने में, तो वे नए यरूशलेम जा सकते हैं। हालांकि तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाना कोई आसान काम नहीं है, बेशक मुश्किल भी नहीं है, उन्हें प्रयास करना है लहू बहाने के बिंदु तक हर प्रकार की बुराई से बचने के लिए। परंतु यदि वे शहीद होकर अपना शारीरिक जीवन प्रभु के लिए दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वे वो लोग हैं जो प्राण देने तक पाप के विरुद्ध होंगे और अंततः पवित्रीकरण को साध लेंगे। इसलिए तीसरे स्वर की महिमा उन लोगों को प्राप्त होगी जो शहीद होंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रभु के लिए शहादत दे सकता है, क्या वो अपने आप को पवित्र नहीं करेगा यदि उसे मसीह जीवन जीने का और अधिक समय मिलता, और साथ ही साथ वो नए यरूशलेम की भी लालसा रखेंगे। यदि आप नए यरूशलेम की महिमा को जान लें, या कम से कम तीसरे स्वर्ग की राज्य की महिमा को, तो आप एहसास करेंगे कि तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाना या उसे ऊपर जाना कितनी महान आशीष है, चाहे शहादत ही क्यों ना हो। शहीद होना कोई आसान काम नहीं है, मगर अगर यह विश्वास के द्वारा हो गया तो स्वर्ग की महिमा जहां हम सदाकाल के लिए रहेंगे वो बहुत ही महान और महान होंगी। उन स्थानों में जहां पर सुसमाचार का प्रचार हुआ है, खास तौर पर ऐसे स्थानों में जहां पर राजाओं ने राज किया, वहां पर मसीहों पर सताव हुआ, बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, वे शेरों के शिकार बन गए और वे शहीद हो गए। और ऐसा कोरिया में भी हुआ है। ऐसे लोगों के पास विश्वास था, उनके पास विश्वास था शहादत होने का, तो फिर वे कैसे तीसरे स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। वे उससे भी बढ़कर थे। इसीलिए कृपया इस बात को जान लें कि हर प्रकार की बुराई से बचना कितनी महान महिमा और आशीष है, और साथ ही प्राण देने तक उत्तरी कोरिया मिशन के लिए विश्वास योग्य रहना, और इसके अलावा उत्तरी कोरिया मिशन के लिए शहादत देना वो लगातार फलों को उत्पन्न करेगा। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों में जो शहादत के गवाह होंगे उनमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गेहूं का मरता हुआ दाना बनेगी, गेहूं का मरता हुआ दाना सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कोई बाहरी व्यक्ति शहीद होने के निर्णय के साथ वहां सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाए, और साथ ही यह भी एक बड़ी ताकत होंगी यदि अंदर के लोग अपना विश्वास बढ़ा सकें और सुसमाचार का प्रचार उसी निर्णय के साथ कर सकें। कुछ लोगों का शहीद होना वो एक विस्फोटक के समान होगा जो वहां पर उन्हीं लोगों में से सुसमाचार प्रचार करने के लिए आग को सुलगाएगा। शहादत होने के लिए प्रतिफल अपने आप में महान है, मगर क्योंकि असंख्य लोगों के ऊपर उद्धार का जो प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा होगा, इसीलिए इसके लिए जो प्रतिफल दिया जाएगा वो भी बहुत ही बड़ा होगा। तो फिर ज्यादातर सदस्य जिन्हें उत्तरी कोरिया मिशन में कोई कार्य नहीं सौंपा गया है, उन्हें क्या करना होगा कि वो जीवन का मुकुट पाए या उसे भी बढ़कर? अब के बाद स्मुन्ना की कलिसिया को जो वचन दिए गए उसका सामान्य अर्थ मैं आपको बताऊंगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि दुष्ट वो दुष्ट आत्मा है जो लोगों को क्रियाओं में पाप कराता है, और जो लोग पाप करते हैं पाप के बदले वो क्लेश और दुख लोगों के ऊपर लाते हैं। प्रभु कहता है कि इस तरह का दुष्ट तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। शत्रु दुष्ट ऐसे ही किसी को जेल खाने में नहीं डाल सकते और उन्हें परख नहीं सकते। जेल खाना वो स्थान है जहां पर लोगों को किसी कानून का उल्लंघन करने के लिए डाला जाता है, इसलिए जेल खाने का होना वो व्यवस्था के होने को दर्शाता है और लोगों को दर्शाता है जो लोग इंचार्ज है। जिस तरह से संसार का कानून है और प्रत्येक के पाप के अनुसार कानून में सजा मिलती है, उसी प्रकार से आत्मिक संसार में भी कानून है। जब लोग सत्य अनुसार जीते हैं तो परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देता है, मगर जब वो उल्लंघन करते हैं तो शत्रु दुष्ट और शैतान के द्वारा उन पर क्लेश और दुख लाए जाते हैं। वे सत्य का उल्लंघन करने का दाम चुकाते हैं और पाप करने का, खास तौर पर शरीर के काम जो वो पाप है जो दुष्ट के उकसाए जाने के द्वारा किए जाते हैं, उनके लिए जो दंड दिए जाते हैं वो उन पापों की गंभीरता के आधार पर दिए जाते हैं। और इसके विषय में प्रभु कहता है इंग्लिश बाइबल के अनुसार कि डेविल अर्थात दुष्ट तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। वे क्लेश और दुख अलग अलग होंगे, ना केवल पाप की गंभीरता के आधार पर बल्कि प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के आधार पर भी। यद्यपि लोग एक ही पाप करते हैं, मगर जो सजा है वो अलग अलग होगी उनके लिए जिनका विश्वास बड़ा है और उनके लिए जिनका विश्वास छोटा है। यद्यपि आप एक ही पाप क्यों ना करें, पाप की गंभीरता बिल्कुल अलग होगी नए विश्वासियों के लिए और वे जिनके पास विश्वास है और वे जिनका विश्वास और भी बड़ा है। हमारे प्रभु ने लूका 12:47-48 में कहा, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा अनुसार चला बहुत मार खाएगा। ये दास अपने स्वामी की इच्छा को जानता था इसलिए वो बहुत मार खाएगा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करें वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत मांगेंगे। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इब्रानियों 6:10 पढ़ें। वहां पर लिखा है कि क्यों वे जो शरीर का काम करते हैं उद्धार नहीं पा सकते। यह उन्हें दर्शाता है जिनके पास विश्वास है, उन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव लिया है, परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव लिया है। क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास विश्वास है, जब वे मृत्यु की ओर ले जाने वाले शरीर का काम करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है और वे लगातार लगातार पाप करते रहते हैं, जबकि वे जानते हैं कि यह पाप है, यह प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाने वाला कार्य है, इसलिए बाइबल हमें कहती है कि वे उद्धार नहीं पाएंगे। और ये सच नहीं है कि वे लोग जिनका विश्वास कमजोर है, यदि वे ऐसा पाप करेंगे तो वे उद्धार नहीं पाएंगे। यदि वे पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो वे उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास अभी उतना बड़ा नहीं है। जिनके पास विश्वास है, जिनके पास नहीं है, यह दोनों के लिए अलग है। इसी प्रकार से जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था मगर उसकी इच्छा अनुसार नहीं चला, वह बहुत मार खाएगा, मगर जो नहीं जानता वह कम मार खाएगा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और जिसे बहुत सौंपा गया था, वो है जिसका विश्वास बड़ा है। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, उतना ही महान काम आप पाएंगे। दूसरी तरफ जो स्वामी की इच्छा नहीं जानता था, वो है जिसका विश्वास कम है। जब उनके विश्वास के परिमाण में इस तरह का अंतर पाया जाता है, तो परमेश्वर जिनका विश्वास बड़ा है उनसे बड़ा लेखा लेगा। जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था उसकी इच्छा अनुसार नहीं चला, दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर की इच्छा जानते थे मगर अपने कार्यों में प्रकट नहीं किया, उनका लेखा बड़ा लिया जाएगा। आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास विश्वास है मगर अपने कामों में विश्वास योग्य नहीं है। वे बीमारियों में और आजमाइशों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास है। वे जानते हैं कि उन्हें विश्वास योग्य होना चाहिए, मगर वो सुस्त है और परमेश्वर के दिए हुए कामों में असफल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे अपना मुख मोड़ देता है, परिणाम स्वरूप उन्हें बीमारियां लग जाती हैं, क्लेशों से या पीड़ाओं में वे रहते हैं। और साथ ही वो ये भी कहता है कि जिनको अधिक सौंपा गया है वो उनसे अधिक लेगा। याकूब 3:1 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यदि आप उपदेशक बनते हैं क्योंकि आपका विश्वास दूसरों से बड़ा है, तो अवश्य ही और भी सिद्ध कार्यों को आपको परमेश्वर के वचनानुसार प्रकट करने चाहिए। अन्यथा क्लेश और सताव आपके ऊपर आएगा। पाप की गंभीरता के आधार पर क्लेश और दुख अलग अलग होगा, और ऐसा ही विश्वास के परिमाण के आधार पर भी होगा। कुछ लोगों का जल्दी ही समाप्त हो जाएगा जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे और मन फिराएंगे, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का दुख और क्लेश लंबा चल सकता है। आपको महान दंड झेलना पड़ सकता है, यहां तक कि आप मन फिराए और पश्चाताप भी करें। इस तरह के सभी मामलों का लेखा जोखा रखने के लिए बहुत सी किताबों के संस्करण लग जाएंगे। इसीलिए सारे मामलों का सामान्य रूप से वर्णन करते हुए पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 अंक भरे हुए अंक को दर्शाता है। इसका मतलब है भरा हुआ अंक। इसीलिए 10 अंक दर्शाता है कि सारे के सारे मामले इसमें शामिल है। इसलिए 10 दिन तक क्लेशों में वे सारे के सारे क्लेश और सताव सम्मिलित है जो कि किए गए पापों का दाम है। इसीलिए अंततः 10 दिन तक क्लेश सभी क्लेश तथा सताओं की घटनाओं को दर्शाते हैं जो इस संसार में आ सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में सारे संदेश पाए जाते हैं। कैसे आशीष आते हैं, कैसे श्राप आता है, कैसे सब कुछ संपन्न हो सकता है, और कैसे लोग क्लेश में पड़ सकते हैं और सताओं में पड़ सकते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी परमेश्वर के दास और चर्च के कार्यकर्ता जो उपदेशक के पद पर है, वे सही से लोगों को नहीं सिखाते। इस कारण बहुत से लोग अभी भी क्लेश और सताओं का सामना करते हैं। मैं अपने ऑफिस में एक विवाहित जोड़े से मिला और उन्होंने अपनी गवाही बताई। जो पति था, 4 साल पहले उसने अपनी बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया था। इस चर्च में आने से पहले उस पति को पेट की बीमारी थी और डिप्रेशन था। उसकी मां भी बीमार थी। हालांकि अभी अभी उसकी शादी हुई थी, मगर वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करने लग गया। 3 महीने तक उसे एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इसीलिए उसे डिप्रेशन हो गया था और पेट की बीमारी हो गई थी। इससे भी बढ़कर उसकी माता बीमार थी। जीने की उसके पास कैसे आशा आ सकती थी? उसके पास जीने की कोई आशा नहीं थी, वो डिप्रेशन में था, कोई आशा उसके पास नहीं थी। इसलिए उसे लगता था कि वो मरना चाहता है, वो आत्महत्या करना चाहता था। मगर अब उसे पता चला कि वे कर्मचारी जो अपने काम में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथी श्रेणी में पाए जाते हैं, वे मानमिन के सदस्य हैं। उसकी एक बड़ी बहन है जो अभी एक विवाह मिशन से संबंध रखती है इस चर्च में। इससे पहले वो युवा जवान मिशन की एक विश्वास योग्य सदस्य थी। उसकी बहन के द्वारा वो मानमिन चर्च में आया और उसने यहां पर पंजीकरण कराया 3 साल पहले शुक्रवार रात्रि सभा के दौरान। और फिर उसने चंगाई प्राप्त की, उसने अपने डिप्रेशन से चंगाई प्राप्त की और अपनी पेट की बीमारी से। और उसके बाद उसने भेंटे तैयार की और मेरी आशीषों की प्रार्थना ग्रहण की। आशीषों के लिए मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट बनने शुरू हो गए। वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था। जब उसने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गए हैं तो उसका विश्वास बढ़ गया और उसने वादा किया, उसने परमेश्वर के सामने संकल्प किया कि वो अपनी आय का 30वां हिस्सा परमेश्वर को देगा। परिणाम स्वरूप उसकी इंश्योरेंस की बिक्री बढ़ने लग गई। इस तरह से आशीष पाने के बाद उसने परमेश्वर के साथ किया हुआ संकल्प तोड़ दिया, क्योंकि वो एक नया विश्वासी था। स्वाभाविक रूप से वो मुश्किल में आ गया, इसलिए वो मेरे पास आया और उसने उस बात के लिए पश्चाताप किया कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। मैं निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करूंगा, मैं अपनी आय का 30वां हिस्सा दूंगा। और फिर कुछ भेंटे देकर उसने आशीषों की प्रार्थना मुझसे ग्रहण की। और फिर उसके बाद जब मैं उससे और उसकी पत्नी से मेरे ऑफिस में मिला तो मैंने उसे पूछा कि उसका दशमांश कितना है, और उसने कहा कि लगभग 15 या 16 हजार डॉलर है। इसलिए उनका 30वां हिस्सा जो आय का है वो 5 से 6 हजार डॉलर होगा। 16 हजार डॉलर उनकी मासिक आय है और लगातार वो बढ़ती जा रही हैं। वे बहुत अच्छे से जानते हैं आशीषों के भेद के बारे में, इसलिए वो निश्चित रूप से आशीषों की प्रार्थना के लिए मेरे पास आते हैं। वे लगभग हर सप्ताह मेरे घर पर आते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। और परिणाम स्वरूप उसने महानता से आशीष पाई बहुत से छोटे से समय में। पिछले साल की तुलना में जो उसका दशमांश था वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया इस वर्ष। और इसका भेद, आशीषों का भेद पहले से बाइबल में है। आपको सिर्फ विश्वास से काम करना है, मगर समस्या यह है कि आप नहीं करते। आशीषों के सारे भेद बाइबल में लिखे हुए हैं। कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास का दावा तो करते हैं, मगर उसके बावजूद भी क्लेश और दुखों में रहते हैं। मैंने इस जोड़े से पूछा कि क्या अभी भी वे एक दूसरे से लड़ते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो कोई लड़ाई नहीं करते, एक खुशी भरा विवाहित जीवन में जी रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब वे लड़ते थे तो उनमें कौन जीतता था, तो पत्नी ने कहा कि वो जीतती थी। शायद पति भले हृदय का व्यक्ति होगा, अवश्य ही उसे दुख होता होगा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि वो अपनी बीमारी के चलते पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए वो अपनी पत्नी के विरुद्ध नहीं बोल पाता था। लेकिन अब वो कहते हैं कि बहुत खुशी से वो अपना विवाहित जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, वो इतना अच्छा है। न्यायी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, वो हमें आशीष देता है सिर्फ अगर हम वचनानुसार जीएं, सत्यानुसार जीएं। आप सोचिए 3 साल पहले उसके जीवन के बारे में, पेट की बीमारी, उसे डिप्रेशन था, उससे भी बढ़कर उसकी मां बीमार थी, और अभी अभी वो अपनी पत्नी से विवाहित हुआ था। आर्थिक रूप से वो अच्छा नहीं था, उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी। वो इंश्योरेंस कंपनी में गया, 3 महीने तक कोई कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिला। ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर से मिलने के बाद उसने वचनानुसार जीवन जिया, प्रार्थना की, भेंटे दी और आज्ञा पालन किया। परिणाम स्वरूप उसे आशीष मिली कि वो एक बड़ी धनराशि दशमांश दे सकता है और वो स्वस्थ भी हो गया, बहुत स्वस्थ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लोग बिना किसी शर्त के ये कहते हुए कि प्रभु पर विश्वास करते हैं उद्धार पा लेंगे, और वो लोग अभी भी पाप करते हैं, वो संपूर्ण दशमांश नहीं देते, प्रभु का दिन पवित्र नहीं मानते, इसीलिए अलग अलग दुर्घटनाएं और क्लेश का वो सामना करते हैं। उसके बावजूद भी वो नहीं जानते कि क्यों इस तरह के क्लेश का वो सामना कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से वो मन नहीं फिरा पाते। संपूर्ण दशमांश देना और प्रभु के दिन को पवित्र मानना, वो अपने आप में परमेश्वर की सुरक्षा को निश्चित नहीं कर सकता। यदि आप किसी निश्चित विश्वास के स्तर पर है, नए विश्वासी के स्तर से ऊपर है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल संपूर्ण दशमांश देने और प्रभु के दिन को पवित्र मानने के द्वारा आपने अपना काम कर दिया है। जितना मजबूत आपका विश्वास बढ़ता है, उतने ही अधिक कार्य परमेश्वर के सामने आपको करने को सौंपे जाते हैं। जब आप नए विश्वासी होते हैं, आप आनंद और धन्यवाद से अपने हृदय की गहराई से भरे रहते हैं, आराधनाओं के दौरान, प्रार्थनाओं के दौरान और दूसरों की सेवा करते समय। परंतु यद्यपि आपका विश्वास बढ़ गया है, मगर अगर आप दूसरों की सेवा, आराधना और प्रार्थना यह सोच के करें कि ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपके और परमेश्वर के बीच में बाधा बन जाएगा। ये दीवार बन चुकी है पहले से। कुछ लोग केवल एक ही बार प्रार्थना से चंगे हो जाते हैं, मगर कुछ नहीं होते। एक महिला है जो मेरी प्रार्थनाओं को बार बार ग्रहण करने के बावजूद भी चंगी नहीं हुई। पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से वो कुड़कुड़ाते हैं। मैंने उसे पूछा कि आप क्यों कुड़कुड़ाते हैं, क्यों आप आनंदित नहीं होती, धन्यवाद नहीं देती? आप सिर्फ ये कहती है कि मुझे यहाँ वहाँ बीमारी है। क्यों आप आनंदित नहीं होती, धन्यवाद नहीं देती? क्यों आप हर वक्त कुड़कुड़ाती है? परमेश्वर हमें कहता है कि आनंदित रहो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। परंतु जब मैंने उसे देखा तो उसका चेहरा इन बातों से बहुत दूर था। ऐसा लग रहा था कि वो रोना चाहते हैं। इसलिए मैंने उसे पूछा कि उसका रोने वाला चेहरा क्यों बना है, तो उसने उत्तर दिया कि उसका पति उसे सताता है, वो उसे उपवास भी नहीं करने देता। इसलिए मैंने उसे फिर से कहा कि क्या वो काम पर भी नहीं जाता, क्या आप तब नहीं कर सकती? तो उसने कहा कि वो काम पर भी नहीं जाता, वो घर पर पड़ा रहता है और मुझे सताता है। इसलिए मैं आश्चर्य में था कि क्या उसके लिए यह अच्छा नहीं, क्योंकि वो कम भोजन खा रही हैं, क्यों वो हर वक्त बीमार रहती हैं? उसे पता होना चाहिए, ये उसके विश्वास की कमी की वजह से है। परमेश्वर कहता है कि हम आनंदित रहे, चाहे सताओ और आजमाइश क्यों ना हो, और सब बातों में धन्यवाद दें। हम सब जानते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना है। मासान मानमिंग चर्च के एक एल्डर्स, उन्होंने अपनी पत्नी की दिमागी मिर्गी के लिए मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और उन्होंने चंगाई प्राप्त कर ली। और उनकी माँ अभी जो 70 की वर्ष की है, वो अंतकारी कैंसर से और डायबिटीज से चंगी हुई। हॉस्पिटल में उसे कहा गया कि ये असंभव है, चंगा होना असंभव था, मगर मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद वो चंगी हो गई। मगर क्यों यह महिला, क्यों ये कुड़कुड़ाती है, क्यों चंगी नहीं होती? यहां तक कि मेरी प्रार्थना को कुछ बार ग्रहण करने के बाद भी, मुझे आशा है कि वो इस बात को एहसास करें। यदि आप कुड़कुड़ाएं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं करेगा, चाहे आप मेरी प्रार्थना 100 बार या 1000 बार ग्रहण क्यों ना करें। यदि आप विश्वास से आए तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बल्कि आप आनंदित होंगे, क्योंकि आपने विश्वास से प्रार्थना ग्रहण की है। मैंने आपको क्या कहा है कि आपको करना है? जब यीशु के नाम से आपके ऊपर सताव होता है, ये मत्ती 5 अध्याय में है, जो धन्य वचन का अध्याय है, वो हमें बताता है कि प्रसन्न हो और आनंदित हो यदि यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर सताव होता है। भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर भी इसी तरह से सताव हुआ, और स्वर्ग में आपका प्रतिफल महान है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो आप ऐसा करेंगे, मगर अगर आप विपरीत करें और वचनानुसार ना जिएं, तो परमेश्वर का कार्य आप कैसे देखेंगे, कैसे? यदि आप परमेश्वर के कहे अनुसार ना करें बल्कि विपरीत करें, तो कैसे परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है? मैंने परमेश्वर के वचन से आपको परामर्श दिया है, मगर आप नहीं मानते। जब कभी वो महिला मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए आती हैं, वो कुड़कुड़ाती हैं अपने दर्द से, सीनियर पास्टर मेरे पूरे शरीर में दर्द है। मैंने ईमानदारी से उससे पूछा कि वो सकारात्मक अंगीकार करे और आनंदित हो, केवल तभी वो आत्मा में आ सकती हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि यदि आप आत्मा में आ जाएंगे तो सब कुछ सुलझ जाएगा। इसके साथ साथ शोधन निश्चित रूप से आता है ताकि आपका विश्वास मजबूत बने, इसीलिए आपको अपने आप को सत्य में दृढ़ रखना है और भी ज्यादा, चाहे कोई बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आपको उसे नहीं बोलना चाहिए यदि आप उससे झांसे में फंस जाएं, और आपको मेहनत करनी चाहिए कि आप मेल मिलाप रख सकूं अपने हर उन लोगों के साथ जो आपके आसपास है। वो इसीलिए क्योंकि शैतान यहां तक कि बहुत सी छोटी बात पर भी आप पर दोष लगाएगा और आपको बाधित करेगा जब आप आत्मा में आने की कोशिश करेंगे और ज्योति में आने की। मैंने आपको आत्मिक नियम के बारे में बार बार बताया है। मैंने आपको बताया है कि किस तरह के मामलों में बीमारियां आती हैं, खास तौर पर क्यों कोई विशेष बीमारी आती है और किस तरह के मामलों के लिए किस तरह की बीमारी आती हैं, क्यों आर्थिक मुश्किलें आती हैं, क्यों परिवारों में ये या वो समस्या आती हैं, और किस तरह के मामलों को आपको मुड़कर देखना चाहिए जब परीक्षाएं आजमाइशें लगातार चलती रहती हैं। मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर आप इस तरह के वचनों के बारे में सोचें तो जब आप कलेशों में पड़ते हैं आप सटीक रूप से समझ सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है और उसका कारण क्या है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आप उस क्लेश से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वो है अपने पापों से पश्चाताप करना और उसे मन फिराना। आपको अवश्य ही आपके और परमेश्वर के बीच में बाधा को तोड़ देना चाहिए और फिर आपको अवश्य ही वचनानुसार जीना चाहिए और परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य रहना चाहिए। परंतु परमेश्वर जो चाहता है वो केवल शारीरिक विश्वास योग्यता नहीं। जब वो कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, वो ना केवल अपने शारीरिक जीवन को देने की विश्वास योग्यता चाहता है बल्कि वह आत्मिक विश्वास योग्यता भी चाहता है। तो फिर परमेश्वर के सम्मुख प्राण देने तक आत्मिक विश्वास योग्यता क्या है? जब इस धरती पर हम अपना जीवन समाप्त करते हैं और परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं तो जितना अधिक हम पिता परमेश्वर के सदृश होंगे, जितना अधिक हमने अपने आप को आत्मा और ज्योति में जोत लिया होगा, उसी के आधार पर हमारे निवास स्थान और प्रतिफल निर्धारित होंगे। ना तो सभी लोगों को मुकुट मिलेगा और ना ही हम सभी को एक ही प्रकार का मुकुट मिलेगा। न्यायी परमेश्वर जो हमें वही देता है जो कुछ हम बोते हैं, वो हमें बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान और बेहतर प्रतिफल देता है। निर्भर करता है कि हमने कितना परमेश्वर की इच्छा अनुसार और विश्वास से जीवन जिया है। यदि वे जिन्होंने ढीला विश्वास से जीवन जिया है और वे जो प्राण देने तक परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य रहे हैं, यदि उन दोनों को स्वर्ग में एक ही प्रकार का प्रतिफल मिले तो यह न्याय नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को अलग अलग निवास स्थानों में बांटा है और ऐसा मुकुट और ऐसी महिमा तैयार की है जो प्रत्येक निवास स्थान के लिए उचित है। मैं संक्षिप्त रूप से उन मुकुटों के बारे में आपको बताऊंगा जो प्रत्येक निवास स्थान में दिए जाएंगे। सबसे पहले वे जो शर्मनाक उद्धार पाते हैं और स्वर्ग लोक में जाते हैं, उनके लिए कोई मुकुट नहीं है। उनके पास केवल इतना ही विश्वास था जिससे उन्होंने मुश्किल से उद्धार पाया। क्योंकि उन्होंने कोई प्रतिफल एकत्र नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई मुकुट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी कोई मुकुट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने परमेश्वर के लिए बहुत वर्षों तक विश्वास योग्यता से काम किया, या फिर आप जन्म से ही मसीह हैं और आपने शरीर के काम किए जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, मगर जो भी है आपने पश्चाताप किया और मन फिराया और उद्धार पा लिया। आपने निरंतर पश्चाताप किया बीमारी के चलते, तो अब आप स्वर्ग में कहां जाएंगे? आप मुश्किल से स्वर्ग लोक में जा पाएंगे। आपके पास कोई प्रतिफल नहीं होंगे। वे जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उनके पास ना कोई घर होगा ना कोई प्रतिफल होगा, चाहे आप कितने ही लंबे समय से मसीह क्यों ना हो। अगर आप कोई ऐसा पाप करे जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो स्वर्ग में जितने भी प्रतिफल आपने एकत्र किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए बच्चे अपने माता पिता के जन्मदिन की कोई पार्टी करते हैं। पिता के बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कुछ अमीर है, मध्यम वर्ग के है और गरीब है। जो अमीर है, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसने विदेश जाने के लिए टिकट खरीदी और पार्टी के टेबल पर सब कुछ तैयार किया। मगर जो सबसे छोटा बेटा है, जो बहुत गरीब है, वो कुछ नहीं लाया, बल्कि अपने पिता के लिए एक चिकन लाया। कौन लगता है आपको कि इनमें से पिता के लिए कौन सबसे प्रिय है और प्रशंसनीय है? इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ा बेटा होगा, जिसने बहुत सारा किया और माता पिता को खुश किया, उसी की प्रशंसा होगी। पिता कहेगा कि मैंने तेरी वजह से बहुत सी आशीषें पाई हैं, धन्यवाद, मैं विदेश जा सकता हूं, क्योंकि तूने ये पार्टी तैयार की है, इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ मैं आनंद कर सकता हूं, मैं कितना धन्य व्यक्ति हूं, मैं बहुत धन्य हूं। मगर पार्टी के खत्म होते होते वो भाई वाद विवाद करने लग गए। सबसे बड़ा भाई छोटे वाले को डांटता है कि क्या तेरे पास सिर्फ इतना ही है, एक चिकन है? क्या तेरे को लगता नहीं कि कम से कम तुझे वो करना चाहिए था जो मैंने किया? तू हमारे पिता के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? और इस तरह से वो वाद विवाद करने लग। जब वो शराब पीते हैं तो वो वाद विवाद करने लग जाते हैं। बड़े वाला बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी बात पर घमंड करने लग जाता है। दूसरे भाइयों को अनदेखा करता है कि मैंने जहाज की टिकट खरीदी उनके लिए, मैंने ये पूरी पार्टी सारी चीजें उनके लिए तैयार की, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? इससे भी बढ़कर बड़े बेटे की पत्नी, वो भी घमंड से भर जाते हैं और वो घर के काम में भी मदद नहीं करती, जबकि उसकी दूसरी बहनें काम करती हैं। इस वजह से भाइयों में संबंध टूट गए और वो पार्टी तहस नहस हो गई। और अब किसने इस पार्टी को भंग किया? ये सबसे बड़ा बेटा है। अब पिता क्या कहेगा? क्या वो ये कहेगा कि बेटा मैं खुश हूं तेरी वजह से? नहीं, वो ये कहेगा कि तुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, तू क्यों आया, क्यों तूने तहस नहस कर दिया इस आनंद के दिन को, मेरे पड़ोसियों के सामने मुझे बेशर्म कर दिया। उस बेटे ने माता पिता को खुश नहीं किया, बल्कि उन्हें उदास कर दिया, क्रोधित कर दिया। उसने अपने माता पिता के हृदय को तोड़ा। वे कहेंगे कि तुझे आना ही नहीं चाहिए था इस समारोह में, यह अच्छा होता कि वो पार्टी ही ना करते। ये पार्टी कैसे पार्टी होगी फिर, कैसे पार्टी बन जाएगी ये? क्या आप समझ पाए हैं? क्या आप समझ पाए हैं? हालांकि यह शरीर का काम नहीं है जो मृत्यु की ओर ले जाए, मगर नतीजा इस तरह का है। यदि विश्वासी मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें तो सारे प्रतिफल अर्थरहित है, क्योंकि अंततः वो अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसलिए सारे के सारे प्रतिफल जो उन्होंने स्वर्ग में एकत्र किए हैं, वे सबके सब शून्य हो जाएंगे। पिता परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे। इस तरह के मामले में अगर जैसे न कैसे पश्चाताप करके उन्होंने उधार पा भी लिया, तो वे केवल स्वर्ग लोक जा पाएंगे। दूसरा, वे जो पहले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, वे अविनाशी मुकुट प्राप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 9:25 में लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। मुरझाने वाले मुकुट का क्या इस्तेमाल होगा? उसका कोई प्रयोग नहीं होगा। वे जो पहले स्वर के राज्य में जाएंगे, वे वो है जो अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वचनानुसार जीने का विश्वास है उनके पास, इसलिए उन्हें अविनाशी मुकुट प्राप्त होगा। इसलिए इस मुकुट का कोई विशेष नाम नहीं है, बल्कि इसका जो नाम है वो है अविनाशी मुकुट। ये एक ऐसा मुकुट है जो नाश नहीं होगा। तीसरा, वे जो दूसरे स्वर के राज्य में जाएंगे, वे महिमा का मुकुट पाएंगे, जैसे कि पहला पत्रस 5:4 में लिखा है। वे लोग जिनके पास दूसरे स्वर्ग में जाने का विश्वास है, वे हैं जो प्राण देने के बिंदु तक पाप के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, उनकी बातें, उनके कार्य, वे संसार के नमक और ज्योति हैं। क्योंकि वे परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा देते हैं, इसलिए वे महिमा का मुकुट प्राप्त करते हैं। चौथा, तीसरा स्वर्ग का राज्य वो स्थान है जहां पर वे पवित्र लोग जाते हैं जो परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। वे हैं जो हर प्रकार की बुराई दूर करते हैं, पवित्र बनते हैं और आत्मा में आते हैं। उन्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा, जैसे कि आज के पाठ में लिखा हुआ है। और अंततः वे जो नई यरूशलेम में जाएंगे, क्योंकि वे ना केवल पवित्र है बल्कि परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य भी है, उन्हें सबसे महिमावान और सुंदर मुकुट दिया जाएगा। वे सोने का मुकुट पाएंगे, जैसे कि प्रकाशित 4:4 में लिखा है, और धार्मिकता का मुकुट, जैसे कि 2 तीमुथियुस 4:8 में लिखा है। कोई पक्षपात नहीं होगा, इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये वो मुकुट है जो उन्हें दिया जाता है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे हैं और वे जो पवित्र है। और इसके अलावा अगर आप स्वर्ग में जाते हैं, वहां पर बहुत प्रकार के मुकुट हैं जो कि बाइबल में नहीं लिखे हैं। बाइबल कुछ ही के बारे में बताते हैं, इसके अलावा और भी दूसरे मुकुट हैं वहां पर। क्या आपको लगता नहीं कि आपको योग्य बनना चाहिए कि कम से कम आप जीवन का मुकुट प्राप्त करें? जीवन का मुकुट। और ऐसा करने के लिए आपको प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, वो शहीदों का विश्वास है। एक व्यक्ति को अपने राजा के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने के लिए देश के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा और अपने राजा के लिए भी अपना जीवन बलिदान करना होगा। परमेश्वर की दृष्टि में भी यह ऐसा ही है। तीसरे स्वर का राज्य जहां जीवन का मुकुट तैयार है, वो स्थान है जहां पर केवल वही जाएंगे जो सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पवित्र है। ऐसे लोगों के पास शहीदों वाला विश्वास है कि प्रभु के लिए वे किसी भी स्थिति में अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। परंतु अवश्य ही आप यह ना सोचें कि शारीरिक जीवन की शहादत देना विश्वास योग्यता है। हालांकि अगर आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आपको विश्वास योग्य होना चाहिए कि आप शारीरिक जीवन भी दे सकें, जैसे कि बहुत से विश्वास के पूर्वजों ने किया। और यह बात यहीं समाप्त नहीं होती। आत्मिक शहादत, दूसरे शब्दों में शहादत के संकल्प से भरा जीवन, वो भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अवश्य ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप संसार से समझौता ना करें, हर प्रकार की बुराई से बचे रहें, प्राण देने के बिंदु तक संघर्ष करने के द्वारा और पाप के विरुद्ध लड़ने के द्वारा। तो जो आपा है वो मर जाता है, और केवल परमेश्वर का वचन जो कि सत्य है, वो आपके हृदय में बना रहेगा। और आप सटीक रूप से परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जिएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:31 में जब प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, तो उसने ऐसा शहादत देने वाले आत्मिक अर्थ के साथ कहा था। यदि आप निरंतर मरते जाएंगे दिन ब दिन, तो फिर मरने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। आप में फिर क्या बचा रहेगा? केवल सत्य बच जाएगा, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह हमारा प्रभु, वो आप में बच जाएगा। केवल आत्मा बच जाएगा, आपका हृदय आत्मा में बदल चुका होगा। यदि आपका हृदय बिना किसी प्रकार की बुराई के पवित्र हो चुका होगा, तो फिर केवल आत्मा ही है जो आप में बचा रहेगा, केवल आत्मा। जब तक आप यहां तक ना पहुंच जाएं, आपको अवश्य ही प्रतिदिन मरना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें जो आपने अपने आपे में डाली हैं, जैसे कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, आपको इन सब बातों से मुक्ति पानी चाहिए। जब आप तमाम पापमय स्वभावों को और मूल पापों को जो आपने अपने माता पिता से पाए हैं दूर कर देते हैं, तो आप पूरी तरह से इस वचन को साथ लेते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्योंकि आप प्रतिदिन मरते हैं, इसलिए केवल यीशु मसीह ही आप में निवास करता है। और अंततः आपका हृदय बदल जाएगा, सत्य में हृदय बदल जाएगा, आत्मा का हृदय बन जाएगा। वे जिनका आपा पूरी तरह से मर चुका है, जो हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं, वे अपने दिए हुए कामों को बहुत अच्छे से करते हैं, और और वे मर रही आत्माओं के प्रति अपने प्रेम के कारण अपनी प्रार्थनाओं में दुहाई देंगे। इस प्रकार से यदि कोई पवित्र व्यक्ति प्राण देने तक विश्वास योग्य है संपूर्ण हृदय के साथ, तो यह है वो विश्वास योग्यता जो प्राण देने तक है, जिसे परमेश्वर वास्तविकता में चाहता है। जो भी है, चाहे आप ये क्यों ना सोचते हो कि मैं तो विश्वास योग्य हूं प्राण देने के बिंदु तक, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को मानता है। जीवन का मुकुट पाने के योग्य बनने के लिए आपको उचित परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और परमेश्वर के सामने आप स्वीकार्य होने चाहिए। याकूब 1:12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। वो व्यक्ति है जो प्राण देने तक पाप का संघर्ष करता है, हर प्रकार की बुराई से बचा रहता है और पवित्र बनता है, और एक बार अगर वो प्रमाणित हो जाए तो वो जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने उनको दी है जो उससे प्रेम करते हैं। वो करने के द्वारा जो परमेश्वर करने को कहता है, और वो काम ना करने के द्वारा जो परमेश्वर करने से इनकार करते हैं, और वो मानने के द्वारा जो परमेश्वर मानने को कहता है, और वो दूर करने के द्वारा जो परमेश्वर दूर करने को कहता है, वो पूरी तरह से वचन को अपने अंदर साध लेता है, वो वचन और आज्ञाओं को साध लेता है, फिर परमेश्वर उसको स्वीकृति देता है। दूसरे शब्दों में, वो मुकुट जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं, यहां पर इस आयत में लिखा है वे जो उससे प्रेम करते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करना क्या है, प्रभु से प्रेम करना क्या है, वो है उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर आप पूरी तरह से आज्ञाओं को माने, जिसका मतलब यह है कि आपको जो करने को कहा जाता है उसे करते हैं, वो नहीं करते जो नहीं करने को कहा जाता है, जो आपको मानना है उसे मानते हैं, जो आपको दूर करना है उसे दूर करते हैं, ये है परमेश्वर से प्रेम करना, और वो जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। यदि आप वचन का पालन करते हैं, पूरी तरह से आज्ञाएं मानते हैं, तो आपके अंदर किसी प्रकार की बुराई नहीं होंगी। आप यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे, जैसे कि बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इस प्रकार से जीवन का मुकुट पाने के लिए आपको परीक्षाओं में धीरज धरना है, और परमेश्वर के द्वारा, स्वयं परमेश्वर के द्वारा आपको स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब्राहम को जब कहा गया कि वो इसहाक को प्रायश्चित का बलिदान करके अर्पण करें, उसने उस परीक्षा को पार किया धन्यवाद के साथ। इस तरह से उसे धर्मी गिना गया और वो तमाम विश्वासियों का पूर्वज बन गया, है कि नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रशंसा की कि उसने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान किया, जिसको उसने 100 की उम्र में पैदा किया था। इसहाक प्रतिज्ञा का बीज था। परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को होम बलि करके वो अर्पण करें। अब्राहम को अपने ही पुत्र को लकड़ी पर लगाना पड़ा और होम बलि करके अर्पण करना पड़ा, परंतु अब्राहम ने इस तरह की परीक्षा में कैसे कार्य किया? क्या उसने शोक किया, दुख प्रकट किया? उसने केवल आमीन कहा और उसने आज्ञा पालन किया, है कि नहीं। आपके ऊपर भी यही लागू होता है। यदि सचमुच आप ना डगमगाने वाली चट्टान पर खड़े हैं, तो फिर चाहे कितनी ही अकल्पनीय बड़ी परीक्षा क्यों ना आए, आप प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, धीरज धरेंगे और आनंद से परीक्षा को पार करेंगे। प्रेरित पौलुस अंगीकार करता है रोमियो 8:35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव वा अकाल या चंगाई या जोखिम या तलवार? हमें कोई भी प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि आपके पास प्रभु के लिए ऐसा प्रेम है, तो आप अपने पूरे जीवन भर चर्च के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, जो कि प्रभु की देह है, और चरवाहे के लिए और समूह के लिए भी। प्राण देने तक इस विश्वास योग्यता के द्वारा आप सबके सब कम से कम जीवन का मुकुट और उसे भी बढ़कर प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इसके बारे में हम अगले सत्र में देखेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह कलीसिया अभी विश्व मिशन को महानता से कर रही है और भविष्य में हम परमेश्वर के राज्य को और भी महानता से पूरा करेंगे और साथ ही हम तेजी से कनान सेंचुरी बनाएंगे और ग्रैंड सेंचुरी बनाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और उसके प्रावधान को पूरा करने के लिए, परंतु इन सब कामों को करने के लिए इस कलीसिया को निश्चित रूप से आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है, जो सचमुच प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें और जिनके पास शहादत का संकल्प हो, जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान कर सकते हैं। जिस प्रकार से शहादत के लहू के दाम के द्वारा मसीहियत पूरे संसार भर में फैल पाई, उसी प्रकार से इस चर्च को सभा के लोगों की प्रार्थना, प्रयास और प्राण देने तक विश्वास योग्यता की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का महान प्रावधान अंत के दिन में पूरा हो सके। 2002 के इंडिया मिरेकल प्रेयर फेस्टिवल के द्वारा परमेश्वर ने थोमा के लहू के दाम को वापस प्राप्त किया, जो 2000 वर्ष पहले भारत में शहीद हुआ था। इस तरह से आपके शहादत का लहू निश्चित रूप से फल उत्पन्न करेगा। इस तरह के लोग जो कर्तव्यों को शहीदों के संकल्प के साथ पूरा कर पाएंगे, मेरे साथ उनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को चुना है और यहाँ की सभा के लोगों को ऐसे ही समय के लिए बुलाया है। उसने आपको पवित्रीकरण के वचन से संशोधित किया है। वो आत्मा के लोगों को एक एक करके प्रकट कर रहा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान केवल कुछ ही लोगों के द्वारा पूरा होगा जो प्रकट हुए है। आप में से हर एक बहुत ही बहुमूल्य है। आपका समर्पण और कार्य और दृढ़ता और अपने पदों पर बना रहना वो महान मदद है इस कलीसिया के लिए और मेरे लिए। मगर हमें सिर्फ इसी से संतुष्ट नहीं होना है। मुझे आशा है कि आप ना केवल जीवन का मुकुट पाएं, बल्कि सोने का मुकुट और धार्मिकता का मुकुट भी पाएं, आत्मिक विश्वास योग्यता के द्वारा जिसमें आप अपना जीवन भी बलिदान कर दें। आप अपने आप को सुंदरता से उज्जवल मुकुट के द्वारा सुसज्जित कर सकें और परमेश्वर की महिमा के सिंहासन के सामने खड़े हो सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। पिता, इस संदेश को आशीष दीजिए जो हमने सुना है आज, कि हम में विश्वास और जीवन बन सके। पिता, आपका धन्यवाद। उन्हें आशीष दीजिए कि वे जीवन का मुकुट, सोने का मुकुट या धार्मिकता का मुकुट प्राप्त कर सकें। उन्हें आशीष दीजिए कि वे तेजी से हर प्रकार की बुराई से बच निकलें और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, ताकि वे आपके सचमुच प्रसन्न करने वाले संतान बन सकें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।